ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जाय उदीरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्णा। तो आज जो है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सातवां स्कंद अध्याय दूसरा असुर राज हिरण्यकशिपु, तो आज श्लोक क्रमांक 2 लेंगे 59 और 60।
यमायता दुपाख्याय यमायेतदुपाख्याय तत्रैवान्तराधिया। ज्ञायतो हि सुयज्ञस्य ज्ञायतो हि सुयज्ञस्य चक्रुर्यात्मां पराविकम् चक्रुर्यात्मां पराविकम् यमा बालक रूप में यमराज एतद् यहां उपाख्याय उपदेश देकर तत्र वहां एव निसंदेह अंतरधियत अंतर्धान हो गया ज्ञातयः संबंधियों ने ही निसंदेह सुयज्ञस्य राजा सुयज्ञ के चक्रुः संपन्न किया यथा जो है सांपरायिकम् अंत्येष्टि संस्कार। अनुवाद तथा तात्पर्यशील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीपाद की अनुवाद। बालक रूप में यमराज सुयज्ञ के समस्त मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब राजा सुयज्ञ के संबंधियों ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। वे अगला श्लोक ले लेते हैं। अथ श्रोतमायोऽयं परम चात्मानमेव वाक आत्मकः परो वात्र स्वीय पारकैव वा स्वपराधिभिन्वेषेन विज्ञानेन देहिनाम्। अनुवाद। अतएव तुम्हारे से किसी को भी शरीर क्षति के लिए, चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का हो, शोक संपत्ति नहीं होना चाहिए। यह तो केवल अज्ञान है जिससे मनुष्य यह सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूं, अन्य लोग कौन है, मेरा क्या है, उसका क्या है, तात्पर्य। इस भौतिक जगत में आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का पहला नियम है। इस धारणा के अनुसार मनुष्य पहले अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेनी चाहिए है, तब समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता आदि आदि पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सब देहात्म बुद्धि एवं आत्मज्ञान के अभाव से ही विकसित है। यह अज्ञान कहलाता है। जब तक मानव समाज अंधकार तथा अज्ञान में है, तब तक लोग देहात्म बुद्धि के कारण बड़ी बड़ी तैयारियां करते रहेंगे। हाँ, प्रहलाद महाराज ने इसे भरम कहा है। भौतिकतावादी धारणा में आधुनिक सभ्यता बड़ी बड़ी सड़कों, घरों, मिलों तथा फैक्ट्रियों के लिए बृहद आयोजन करती है, और सभ्यता की उन्नति के विषय में मनुष्य की यही धारणा है। लेकिन लोग यह नहीं जानते कि वे स्वयं किसी भी क्षण इस दृश्य से बाहर किए जा सकते हैं और ऐसे शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य हो सकते हैं जिन्हें विशाल घरों, महलों, सड़कों तथा स्वचालित यानों से कोई सरोकार न हो। अतएव जब अर्जुन अपने सगे रिश्तेदारों से शारीरिक संबंधों के बारे में सोच रहा था, तो कृष्ण ने तुरंत ही उसे यह कहकर प्रताड़ित किया था। कुतस्वम कश्मलिनम विषमेषु समुपस्थितम अनार्य जुष्टम। यह देहात्म बुद्धि अनार्यों को शोभा देती है जिसका ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता। आर्य सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ी चढ़ी होती है, किंतु कोई आर्य का ठप्पा लगाकर आर्य नहीं बनता। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में गहन अंधकार में रहकर कोई अपने को आर्य होने का दावा करे तो वह अनार्य है। इस प्रसंग में श्रील माध्वाचार्य ने ब्रह्म वैवत पुराण से निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। कात्मक पर इति देहाध्यपेक्षया नहि देहादिरात्मस्यंच शत्रुरिधिरित। अतो देहिक वृद्धो वा क्षये वा किं प्रयोजनम् यस्तु देहागतो जीवस हि नाशं न गच्छति तथ शत्रु विवृद्धो च स्वप्नाशो शोचनम् कुतः देहादि व्यक्तिरितेक्यो तु जीवेशो प्रतिजानत। अथ आत्म विवृद्धिस्तो वासुदेवे रति स्थिरा शत्रुनाशस्तथा ज्ञान नाशो नान्यम कथंचन। इसका भाव यह है कि जब तक हम इस मनुष्य के शरीर में है, हमारा कर्तव्य है कि शरीर के भीतर के आत्मा को समझे। शरीर आत्मा नहीं है, हम शरीर से भिन्न है। अतएव देहात्म बुद्धि के रूप में मित्रों, शत्रुओं तथा जिम्मेदारियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किसी को इसके विषय में अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए कि शरीर शिशुता से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में और तब मृत्यु में बदल रहा है। प्रत्युत मानव मनुष्य को के शरीर में के भीतर स्थित आत्मा के विषय में तथा भवबंधन से आत्मा को छुड़ाने के विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। शरीर के भीतर का जीव कभी विनष्ट नहीं होता। अतएव मनुष्य को चाहिए यह जान लेना चाहिए कि उसके चाहे लाखों दोस्त या दुश्मन हो, न तो दोस्त सहायता कर सकता है न ही दुश्मन कोई हानि पहुंचा सकते हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शरीर से होने वाले परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्म के रूप में भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसे शारीरिक संबंधों यथा दोस्त या दुश्मनों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में न तो हम स्वयं और न हमारे शत्रु कभी मारे जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये अभी एक आखिरी श्लोक बचा हुआ है कल के लिए, तो कल ये अध्याय जो है समाप्त हो जाएगा। तो अब तक हम देखते हैं कि इस अध्याय में जैसे आप देखते हैं कि भगवान ने वरह रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया, तो हिरण्यकश्यप जो है वो बहुत क्रुद्ध हो गए और उसने अपने उनके घरदारों और जितने रिश्तेदार थे उनको समझाया, बताया कि देखो ये विष्णु जो है ये सम भाव रखते हैं, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि देवताओं का पक्ष लिया है। तो उन्होंने उनके जितने भी ये थे पार्षद उनको संबोधित किया कि आप क्या करो, अभी जाके जितने भी ब्राह्मण के वस्तियां हैं, गांव है, सब जगह जाके क्या करो, आग से जला दो, गौशाला से लेकर सब कुछ। और इस प्रकार जो है आप देखते कि हिरण्यकश्यप जो है हिरण्याक्ष के घर वालों को जब भी बता रहा था तो उसी के अंतर इसमें वो जो है एक कथा बताते हैं कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में एक राजा था सुयज्ञ, और किस प्रकार वो एक बार युद्ध करने गया था और युद्ध में जो है वो परम गति प्राप्त हुई उसको। तो जब भी उसकी रानियां वहां आई और वो रो रही थी तो उनकी आवाज जो है यमलोक में यमराज जी को सुनाई दे रही थी। आप लोग अनुमान कर सकते कि उनकी आवाज कितनी तेज की होगी। तो यमराज भी सोच में पड़ गए। तो यमराज जी जब ही आए तो यमराज जी ने अपना रूप बदला, क्योंकि कभी कभी घर के लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो भागवतम में इसका और एक उल्लेख आता है चित्रकेतु का भी। आप देखते हैं कि जब चित्रकेतु का पुत्र गुजर गया था तो पूरा उसका राज्य सब जो है वो दुखी थे। तो यहां हम देखते हैं कि सुयज्ञ की जो पत्नियां हैं वो भगवान को कोस रही थी। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ भी होता है तो हम भगवान को कोसते हैं कि नहीं। समझो किसी का बच्चा मोटरसाइकिल में गुजर गया एक्सीडेंट में, तो ये क्या मोटरसाइकिल भगवान ने बनाया था क्या? नहीं, किसी असुर ने बनाया होगा, है कि नहीं। तो हम भगवान को जो है कोसते हैं। तो इस प्रकार यमराज जी वहां आए और यमराज जी ने कहा, अरे तुम लोग मूर्ख हो, आप जिंदगी भर यहां रोते रहोगे, आपकी भी मृत्यु होगी, लेकिन ये व्यक्ति कभी जिंदा नहीं होगा। तो फिर यमराज जी और एक कथा बताते हैं कुलिंग पक्षियों की। तो एक पति पत्नी थे कुलिंग पक्षी। तो एक बार क्या हो गया कि कुलिंग जो है उसकी पत्नी एक जो है शिकारी के जाल में फंस गई। तो ये कुलिंग पक्षी बड़ा दुख कर रहा था, अरे मेरी पत्नी, अरे परमा, ये विधाता मेरी अर्धांगिनी को लेकर तुझे क्या मिलने वाला है। वो भी विधाता को कोसने लग गया। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि भागवतम में बहुत जगह ये उल्लेख आया है कि कुछ ऐसी स्थितियां होती है जहां हम भगवान को कोसते, डायरेक्टली भगवान को कोस देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो भी हो रहा है उसके पीछे हमारा ही कुछ पूर्व कर्म छुपा हुआ है। तो इस प्रकार जब ही वो कुलिंग पक्षी दुख प्रकट कर रहा था तो शिकारी पीछे छुपा हुआ था, जाके शिकारी ने उसको भी जो है बाण से भेद दिया। तो यमराज जी उनको कहते कि देखो अभी जो है इसके पीछे आपको कुछ नहीं होने वाला। तो जब ही उन रानियों ने ये सब कुछ सुन लिया तो उनको एक आत्म साक्षात्कार हो गया। उस वक्त जाके हम देखते हैं कि सुयज्ञ का जो है अंतिम संस्कार किया गया। तो अभी एक बड़ा प्रश्न आता है कि हमारी जो है सनातन संस्कृति में मरे हुए शरीर को जलाते हैं, इसके पीछे कोई बता सकता है कारण क्या है, क्यों एक शरीर को जलाते हैं? शरीर को क्यों, थोड़े धर्मों में उसको जमीन में गाड़ते हैं, थोड़े नदी में बहा देते हैं, थोड़े तो पक्षियों को जानवरों को खिला देते हैं। तो हमारे यहां आजकल कोरोना में भी वो कहते थे कि जलाना चाहिए जो भी है। तो शरीर को क्यों जला, ऐसे देखा जाए तो सन्यासियों का शरीर जलाया नहीं जाता है, उसका भी एक अलग कारण है। हाँ, उनका शरीर सच्चिदानंद होता है, ठीक है, इसलिए उनके शरीर को समाधि दी जाती है, क्योंकि भगवान के वो भक्ति में लगे रहते अपने मनसा कर्मणा वाचा से। लेकिन हमारी जो भौतिक, हमारा जो शरीर क्यों जलाया जाता है, किसी को उत्तर नहीं मालूम? हाँ जी, पांच तत्व तो पांच में मिल जाएंगे अलग होके। अच्छा अच्छा, गाड़ने से गल जाएगा और कोई उत्तर देने वाला है नहीं, इतना बड़ा अज्ञान। हाँ ग्रेट, माता जी ने सही उत्तर दिया। आत्मा जो है, जब भी जो एक व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, ऐसे तो यमराज यमदूत आके उसको जबरदस्ती, जैसे हम किसी भाड़े के घर में रहते हैं तो मालिक क्या कर देता है, आपका सामान पूरा बाहर फेंक देता है ना, तो इसी प्रकार यमदूत क्या करते हैं, उस व्यक्ति को उस शरीर से बाहर निकालते हैं, फिर उसका सूक्ष्म शरीर वहीं मंडराता रहता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। कभी कभी आत्मा शरीर से बाहर आती है, वो देखते हैं अरे क्या हो रहा है मेरे शरीर पर। तो जैसे एक चूहा होता है बिल से बाहर निकलता है, फिर वो अपने बिल के अंदर घुसने का प्रयास करता है, तो उसी प्रकार ऐसे तो मुमकिन है ही नहीं, एक बार आत्मा शरीर से निकल जाता है उसको अंदर फिर घुसने का चांस नहीं मिलता है। तो बताया जाता है कि जब तक उस शरीर को जलाया नहीं जाता है, उसकी आसक्ति, उस व्यक्ति की उस शरीर के प्रति आसक्ति बनी रहती है, ताकि उसको, उसके परिवार के लोगों को उस शरीर से उसकी आसक्ति खत्म हो जाए, इसलिए इस शरीर को जलाया जाता है शास्त्रों में। तो ये शास्त्रों का कथन है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि उस शरीर की जो है उसकी आसक्ति कम करने के लिए उसको जलाया जाता है। फिर यमदूत जो है रामायण में, सॉरी महाभारत में उल्लेख आता है कि इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति ने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया है, दान धर्म किया, उसी प्रकार, ऐसे नहीं कि हर एक व्यक्ति को यमराज जी ये नहीं देते, वेदना नहीं देते, एक व्यक्ति ने जैसे भी धार्मिक अपना जीवन व्यतीत किया है, अगर एक व्यक्ति ने बहुत सारा अन्न दान किया है, लोगों को जल पिलाया है, तो ऐसे व्यक्ति को अन्न या जल अलग वो सारी सुविधाएं मिलती है, जब तक वो यमराज जी के पास पहुंचता नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि ये यमराज जी ने एक बच्चे का रूप इसलिए धारण किया था ताकि वो लोग समझ सके। जब चित्रकेतु का भी बच्चा गुजर गया था तो अंगिरा मुनि जो है वो समझ गया, अभी ये राजा चित्रकेतु उसकी पत्नी ये इतने दुखी है कि मैं समझा नहीं सकता, तो वो नारद मुनि को ले आए और नारद मुनि ने उस बच्चे को फिर से जीवित किया। अरे बेटा देखो, तुम्हारे घर वाले यहां दुख मना रहे, आप कुछ उनको बताओ। तो उस जब भी बच्चे ने कहा, अरे मेरे माता पिता बहुत बहुत सारे मेरे माता पिता हो गए हैं, ये तो मेरे पिछले जन्म के माता पिता थे, तो ऐसे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। उसी प्रकार चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में भी आप देखते हैं, श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि के अवतार है, तो उसके अंतर्गत भी आप देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में जब वो लीलाएं करते थे, तो एक बार श्रीवास ठाकुर का पुत्र गुजर गया, तो स्त्रियां क्रंदन कर रही थी, तो श्रीवास ठाकुर ने कहा अगर आप रोना जारी रखोगे तो मैं गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डूब के मर जाऊंगा, तो उन्होंने रोना बंद कर दिया। तो लंबी कथा है, लेकिन जब ही महाप्रभु को पता चला तो फिर महाप्रभु उस बच्चे के पास गए, उन्होंने उसको जीवित किया। तो आप देखते हैं कि यहाँ यमराज जी जो है उनको आके समझाने का प्रयास कर रहे कि किस प्रकार ये जो है शरीर हमें भौतिक जगत में, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत क्या है कि आत्म संरक्षण। तो हमारे आजकल के साइंटिस्ट लोग बहुत सारे रिसर्च करते रहते हैं। एक बार एक साइंटिस्ट ने एक पानी के डिब्बे में, एक बंदरी थी, उसका एक बच्चा था, तो उसमें उसने क्या किया, पानी भरना चालू किया नीचे से, तो उस बंदरी ने क्या किया, अपने बच्चे को सर तक लिया, जब तक पानी यहां तक आया, तो अंत में उसने क्या किया, बच्चे को अपने पैर के नीचे रख दिया और वो ऊपर आ गई। जब पानी नाक के ऊपर, सर के ऊपर आ रहा था, तो कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं इस भौतिक जगत में आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का पहला नियम है। जैसे मुझे याद है कि जैसे नेवी में जहाज होता है, अगर कभी जहाज डूब जाता है तो वो क्या कहते हैं कि दूसरों को मत बचाओ, खुद को बचाओ, टेक इंडिविजुअल अवॉइडिंग एक्शन, इसका मतलब है कि एक दूसरे से भिड़ो मत, अपने आप को बचा लो। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कहा था, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो पहले हमें आत्म साक्षात्कारी बनना चाहिए। तो आगे यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस धारणा के अनुसार मनुष्य पहले अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेनी चाहिए, तब समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता आदि आदि पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सब देहात्म बुद्धि एवं आत्मज्ञान के अभाव से ही विकसित है, यह अज्ञान कहलाता है। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अज्ञान में जी रहे, जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा युधिष्ठिर महाराज का, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। तो इस भौतिक जगत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 99% लोग हैं इस भौतिक जगत में, वो क्या है कि अज्ञान में जी रहे, लेकिन वो नहीं जानते कि हम अपने आत्मा का हनन कर रहे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छा भजन भी लिखा है, दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे, कृष्ण भजिनो दुख कहीं भूप कहारे। और एक नरोत्तमदास ठाकुर भी लिखते हैं, हरि हरि बीफले जन्म गोनाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानी आसुनिया विष खाइनो। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि आजकल जितने भी इस दुनिया में राष्ट्र है, कितने देश है कोई जानता है यूनाइटेड नेशन में, जनरल नॉलेज वन, हाँ ओके प्रभु जी 193, कोई कहते हैं 199, जो भी है। तो आज इस दुनिया में हर एक जो है देश है वो क्या कहते हैं, सबका विकास, चलो जो भी है, भारत में भी बड़ा विकास का ही चल रहा है एक साथ जो भी है। तो हम वो कुछ पेपर वगैरह पढ़ते नहीं, इतना ज्ञान नहीं है। तो आप देखते हैं कि भारत में भी बहुत प्रगति हो रही है। तो प्रगति क्या है, भौतिक प्रगति। अभी हाल ही में एक व्यक्ति एक सर्वे के अनुसार बता रहे थे कि भारत के जो फैक्ट्रियों में जो सीमेंट बनता है, सीमेंट उसका 70% सीमेंट है वो आजकल सीमेंट रोड बनाने में, एक्सप्रेस हाईवे टू हेल। तो बड़े बड़े जो है यमुना एक्सप्रेस से लेके बड़े बड़े रोड जो बन रहे हैं या ब्रिज बन रहे हैं, उस काम में ये यूज किया जाता है। तो भौतिक जगत में हम देख रहे हैं कि जितनी भी प्रगति हो रही है तो ये सारे देहात्म बुद्धि के अनुसार हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो है देहात्म बुद्धि के कारण है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य के शरीर के भीतर स्थित आत्मा के विषय में तथा भवबंधन से आत्मा को छुड़ाने के विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। हमें आत्मा को जो है उस शरीर से, जैसे आजकल कोई बीमार होता है तो घर वाले क्या करते हैं उसको कहते हैं ये हॉस्पिटल ले जाओ। लोग बहुत आजकल सुझाव देने वाले कम लोग नहीं है, कहेंगे ये मथुरा ले जाओ, मथुरा से कहेंगे आगरा ले जाओ, आगरा से कहेंगे दिल्ली ले जाओ, फिर वहां से लंदन, वहां से अमेरिका, पता नहीं कहां ले जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन उस आत्मा को बचाने का उसमें कुछ किसी को उसका ज्ञान नहीं है, हाँ उस शरीर को बचाने का प्रयास कर रहे। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं भगवद गीता में। एक बार एक व्यक्ति, एक सेठ जी कहीं घर के वहां नदी के पास नदी में आचमन करने गए थे, क्योंकि मोटे थे बेचारे, फिसल गए तो नदी के अंदर चले गए, तो बेचारे डूब रहे थे। तो वो चिल्ला रहे थे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, तो सब देख रहे थे, कोई था नहीं उसको जाके बचाएगा। तो कोई एक गांव का एक जवान था, तो उसने धाड़स किया, सोचा चलो मैं इसको जाके बचाऊंगा। तो जाके वो उसका जैकेट पकड़ के उसको खींच के साइड में लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैकेट ही उसका निकल के उसके हाथ में आ गया, तब तक सेठ जी बेचारा डूब गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये हमारे शरीर के वस्त्र को बचाने का क्या फायदा है, ये भौतिक शरीर जो है 24 तत्वों से बचा हुआ बना हुआ है, इसको अगर बचाने का प्रयास करेंगे तो क्या लाभ है। तो इसमें प्रभुपाद जी भगवद गीता के एक इसमें लेक्चर में, पहला अध्याय का पहला एक लेक्चर प्रभुपाद जी एक जगह दे रहे थे, तो उसमें प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छा कोट किया है। तो एक बार दशरथ महाराज जो है उनको मिलने के लिए विश्वामित्र आए थे। कौन आए थे? विश्वामित्र। अभी आप लोग जानते हैं विश्वामित्र बहुत बड़े राजा थे, लेकिन विश्वामित्र को क्या बनना था कोई जानता है? हाँ अरे वाह, ब्रह्म ऋषि बनना था, हाँ इसलिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तो जब ही दशरथ महाराज के पास विश्वामित्र आए थे, तो उस वक्त जो है दशरथ महाराज ने सोचा, चलो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपकी प्रगति चल रही है, काफी बार मुझे थोड़े लोग पूछते हैं आप वृंदावन में रहते हैं कभी आपने भगवान को देखा है क्या, हम कहते हैं हाँ हम तो डेली देख लेते हैं, चलो जो भी है। तो विश्वामित्र जो है उनकी जो है उनसे दशरथ महाराज ने जिज्ञासा किया, वो कहते हैं आसितम यत तम पुनर्जन्म जायया, इसका मतलब है कि देखो अभी आपने इस भौतिक जगत में सब कुछ त्याग दिया है और वो आप आत्म यानी साक्षात्कार के पथ पर चल रहे, जैसे वेदांत सूत्र में उल्लेख आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब दशरथ महाराज ने उनको पूछा कि आप बताओ आपने मृत्यु के ऊपर कितना जय प्राप्त कर लिया है, जैसे किसी एक व्यक्ति ने एक किताब भी लिखा है मृत्युंजय, जैसे हमारे महाराष्ट्र में जब हम वहां जाते हैं किताब वितरण के लिए तो लोग पूछते हैं आपके पास ये ग्रंथ है क्या, मृत्युंजय यानी मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करना, हाँ इतना आसान नहीं है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति मृत्यु के ऊपर अपना जय प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति कितना भी विकास करने में लगा हो लेकिन उसको इस शरीर से कभी भी निकलना होगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि 50 साल के बाद में, अभी हम सर्वे नहीं करेंगे, यहां जो भी 50 प्लस है थोड़ा याद रख लो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम 50 प्लस के बाद में हम लोग इन्वर्टर पर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं? इन्वर्टर, जानते हैं आप लोग जब बिजली जाती है तो वो बैटरी पर चलता है, तो बैटरी की भी जिंदगी कितनी होती है, 2-3 साल की है कि नहीं। तो समझो जिसका 50 साल हो गया कभी भी बुलावा आ सकता है कि नहीं। तो हम प्रभुपाद जी दो उदाहरण बताते हैं कि भारत का जब भी पंचवार्षिक योजना चल रहा था तो एक बड़े जाने माने डॉक्टर थे और एक मीटिंग में जा रहे थे, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे थे, और उनके अगल बगल में रेलवे में 8 और डॉक्टर थे। अचानक मृत्यु ने कहा अभी बहुत हो गया चलो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जब मृत्यु का टाइम आएगा तो यमराज जी बूट से मुंह पर लात मारेंगे। आप लोग जानते हैं बूट क्या होता है? बूट, ये हम लोग आजकल जो हवाई चप्पल डालते हैं वो नहीं, बूट होता है जो फौजी लोग डालते हैं, उसके नीचे लगा रहता है घोड़े का पैर का नाल, जैसे घोड़े के पैर में नाल लगाते हैं तो उस बूट में भी नीचे नाल लगा होता है। तो इस प्रकार वो जो व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे थे, अचानक उनको हृदय रोग हो गया, वो गुजर गए, 8 डॉक्टर थे उनको कोई बचा नहीं पाया। और एक उल्लेख प्रभुपाद जी बताते, प्रभुपाद जी इलाहाबाद में थे तो प्रभुपाद जी का एक छोटा सा दुकान था, तो एक बार प्रभुपाद जी एक डॉक्टर को, उनके मित्र थे, उनके पास गए थे, तो एक बड़े व्यापारी आए थे वो डॉक्टर के पास, वो कह रहे थे डॉक्टर साहब मेरे इतने सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आप मेरी आयु कम से कम 4 साल से मेरी आयु बढ़ाओ। तो डॉक्टर कह रहे थे सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो लोग इस भौतिक शरीर को बचाने में लगे हैं, तो ऐसे आदमी को जो है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत कहा गया है आत्महा। आत्महा का मतलब है आत्मा की हत्या करने वाला। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस करते हैं। अभी कोरोना के समय लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जिनका इंश्योरेंस नहीं था उन्होंने भी कोरोना का इंश्योरेंस करा दिया है। तो हम कितने भी बढ़िया सिक्योरिटी लगाएंगे या कितने भी बढ़िया डॉक्टर बनाएंगे या कितना भी अच्छा, वो क्या कहते हैं आजकल CCTV, हाँ ऊपर वाला सब देख रहा है, क्या देख रहा है, ऊपर वाला का मतलब है वो कैमरा। तो जो भी है भौतिक जगत में हम कितने भी बड़े हाई सोसाइटी में रहेंगे लेकिन जब मृत्यु आएगी तो हमें कोई घर वाला भी कहेगा चलो इनको जल्दी लेके निकलो यहां से। तो एक सच्ची घटना है, मेरे एक मित्र बेंगलोर में रहते थे, ये 35 साल पुरानी घटना है। तो उनकी शादी होकर 35 साल हो गए थे, उनके बच्चे पढ़ लिख के वो अमेरिका में जॉब कर रहे थे। एक दिन अचानक जो पति जो थे भोजन करके जब ही सोने वाले थे, अचानक उनको जो है कार्डियक अरेस्ट, सीवियर हार्ट अटैक हो गया, तो बेचारे गुजर गए। तो पत्नी रोने लगी जोर जोर से, तो सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो गए, चेयरमैन आ गया, और वर्षा का समय था तो उन्होंने देखा अभी रात हो गई है, बारिश हो रही है, इनको ले जाना अभी आसान नहीं है। तो चेयरमैन ने वो स्त्री से कहा देखो आज की रात आप संभालो, कल सुबह हम इनको ले जाएंगे सुबह सुबह। तो उसने कहा नहीं 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 मुझे डर लगता है। तो अभी आप अनुमान लगाओ 35 साल से आप लोग एक साथ रह रहे थे, सोने के बाद पता भी नहीं चलता है। थोड़े लोग तो ऐसे खर्राटे मारते कि आपको सोने भी नहीं देते हैं कि नहीं। अगर सोने के बाद व्यक्ति एक बार कोई गुजर भी जाता है तो पता चलता है क्या ये जिंदा है क्या मरा है? नहीं। तो जो भी है, तो भौतिक जगत में हम समझ सकते हैं कि कब हमारा बुलाव आएगा पता नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे श्लोक है, अभी आप यहां देख रहे हैं, एक नदी बह रही है। क्या बह रही है? हाँ, थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लो, तब तक मैं तात्पर्य पढ़ लेता हूं। तो यहां क्या बताया है कि नृदया, ये ऐसे बताया है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा को बचाता नहीं है वो क्या है? आत्महा, जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है, इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जा सकती है जिसका माजी गुरु है और भगवान के आदेश अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हंता मानना चाहिए। आत्मा, तो आप देख रहे हैं ये नदी क्या है, कोई बता सकता है? पता नहीं, सबके दृष्टि कितनी है पता नहीं। हाँ, भाव सागर, इसमें सारे लाश बह रहे। क्या बह रहे? हाँ, मरे हुए लाश बह रहे। तो आप ऊपर में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिंदा है, वो हाथ दे रहा है, एक व्यक्ति उसको हाथ दे रहे, वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे। तो आप देखते हैं कि इस भौतिक जगत में क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं कि जो जिंदा हो अनादिकाल से। तो भौतिक जगत का एक नियम ही है कि कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को इस भौतिक बंधन से एक दिन तो निकलना ही है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा को हमें मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो आजकल आप देखते हैं कि कहीं कहीं क्या होता है कि कुएं में कोई गिर गया तो कुएं से उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, क्रेन से लेके क्या क्या लेके आते हैं कि नहीं। कोई जानवर समझो कहीं फंस गया, ये हो गया। अभी हाल ही ने एक व्यक्ति ने एक वीडियो भेजा था जिसमें एक हाथी एक गड्ढे में उल्टा गिर गया, तो उस हाथी को बाहर निकालने के लिए 4 JCB लेके आए मिट्टी निकालने के लिए, जो भी है। लेकिन चलो, हाथी तो बेचारा वो फ्री हो गया, मुक्त हो गया। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जानवर और हमारे अंदर बहुत व्यत्यास है। तो इसलिए वेदांत सूत्र का सर्वप्रथम जो कथन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो भौतिक जगत में रूपा जी बताते हैं कि लोग ज्यादा करके अज्ञान में जी रहे और वो नहीं जानते कि इस शरीर के पश्चात दूसरा भी शरीर मिलने वाला है। और काफी लोग कहते हैं कि चलो वो लोग स्वर्गवास हो गए, क्या जाके उन्होंने स्वर्ग से फोन किया क्या, मैं आराम से पहुंच गया, सब कुछ मेरा यहाँ आइटम पहुंच गया? नहीं। तो इस भौतिक जगत में लोग जो है रूपा जी बताते हैं अज्ञान में जी रहे। तो और एक बहुत सुंदर श्लोक आता है यानी 11वें स्कंद में, अनेकों अनेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाए। इंद्र तृप्ति के सबसे गहरी योनि में भी प्राप्त है, किंतु कृष्ण भावनामृत मनुष्य को जो है ही प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हमने बहुत सारे अपने जन्म जो है वो पशु की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में गंवाए हैं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते थे एक जन्म, अभी ये मनुष्य जन्म मिला है, आप लोग भक्ति में आए हैं तो कम से कम एक जन्म आप भगवान के भक्ति में लगा दो, अन्य सारे जन्मों में तो आपने आहार निद्रा भय मैथुन में लगाया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी एक व्यक्ति को धीर बनना चाहिए, जैसे भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान बताते हैं धीरस्तत्र न मुह्यति। तो एक व्यक्ति जो धीर का मतलब है जानकार है, वो कभी भ्रमित नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब सूद गोस्वामी आए थे और वहां नैमिषारण्य के ऋषियों ने उनसे जो भी जिज्ञासा की थी, उन्होंने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, सवै पुंसो परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे। तो उन्होंने बताया था कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण्य तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट हो। और फिर वो आगे बताते हैं कि धर्म क्या, वास्तविक धर्म क्या है। तो उसमें वो बताते हैं मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न करें कर सकें तो वे केवल व्यर्थ का श्रम मात्र है। तो आज इस भौतिक जगत में जितना भी प्रयास हो रहा है, जो भी भौतिक प्रगति करते जा रहे, ये क्या है कि एक व्यर्थ प्रयास है। ये क्या है कि एक व्यर्थ का प्रयास है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि आज सब जगह लोग, कोई मरना नहीं चाहता, तो बहुत सारे देशों में जो है ये कोविड का वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा शरीर है, ये एक ऐसे हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे जिसमें आप कितना भी बॉन्ड, कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दो, ये शरीर एक दिन क्या होने वाला है, लुटकने वाला ही है एक शरीर। इसमें आप कितना भी शैम्पू से लेके फेस क्रीम से लेके जो भी लगाओ। तो आज इस दुनिया में तीन सबसे बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो है, पहला नंबर पर है डिफेंस, सेकंड है वो फूड इंडस्ट्री, तीसरा है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल मतलब है मेडिकल कंपनी वाले सबसे ज्यादा लोगों से पैसा कमाते हैं। और वो चाहते कि हम माँ के गर्भ से लेके फ्रॉम ओम टू टूम्ब, टूम का मतलब है जन्म से लेके मृत्यु तक लोग जो है वो दवा खाते खाते ही रहे। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनका एजेंडा है कि लोगों को जिंदगी भर दवे के ऊपर रख दो। तो लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है। तो प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं कि भौतिक जगत में लोगों का केवल प्रश्न उत्तर चलता रहता है। आजकल लोग मोबाइल में लोग बात करते रहते हैं, मोबाइल कंपनी वाले कहते हैं 24 घंटा बात करते रहो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों में से परिपूर्ण है, सारे पक्षी पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। सुबह होते ही सारे पक्षी अपने अपने समूह में प्रश्न तथा उत्तर में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है, व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में, वकील तथा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं, संसद में प्रश्नोत्तर से ही लगे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जब तक आत्मा के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो प्रभुपाद जी वो उदाहरण देते हैं कि एक रईस महिला थी और उसके पास जो है एक बढ़िया तोता था और उस तोते के लिए उसने एक सोने का पिंजरा बनाया था, लेकिन वो महिला जो है वो तोते को खिलाना भूल गई। तो अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है कि आज इस दुनिया में मनुष्य प्राणी क्या कर रहा है, इस वीडियो को देख लो। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आधुनिक मनुष्य है, देखो क्या क्या करता है एक मनुष्य। तो आजकल हम गाड़ी में, मोटरसाइकिल में घूमते हैं, ये देख लो अगला एडवांसमेंट। ये है मुर्गी, वहां मुर्गी को खिला खिला कर जो दो एक साल लगता है उसको दो महीने में बड़ा मुर्गी बना देते हैं। उसमें हॉर्मोन्स डाल के उसको जो है, अभी मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि आपको हम घर बैठे बैठे भोजन खिलाएंगे, आप घर में भोजन मत बनाओ। घर से किचन निकाल दो, ठीक है, तो आगे देखो क्या हो रहा है। मनुष्य जो है प्रगति के नाम पर क्या कर रहा है, देखो इस भौतिक जगत में क्या बवाल हो रहा है, देखो तो एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग पिक्चर है, ज्यादा नहीं है, 3 मिनट का है। तो हम लोग समंदर में लाखों टन में कचरा डाल रहे और करोड़ों टन में मछलियां पकड़ रहे, तो फिर आगे हम देखते हैं कि आज इस दुनिया में 50% जो है जीव जंतु वो खत्म हो गए हैं। फिर आगे पेड़ों को काट के जो है न्यूज़पेपर से लेके पता नहीं क्या क्या बनता जा रहा है। प्रगति का दौर, फिर बड़े बड़े बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग और उसमें फैक्ट्रियां, देख लो। एक बार एक व्यक्ति कह रहे थे मेरे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है। मैंने सोचा चलो यमराज जी को आपसे ये लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, अपॉइंटमेंट, देख लो ये है। कोई कहता है अरे दिल्ली हेली हेली कहते हैं, एक बार कोई व्यक्ति कह रहा था ये दिल्ली नहीं हेली है, तो देख लो ये प्रगति है हमारी, ये सब कुछ फैक्ट्री से मिलेगा और इसमें पता नहीं कितने केमिकल होते क्या होते हैं। इस प्रकार सब जगह कचरों का पहाड़ है। हाँ, मैंने खुद दिल्ली में एक बड़ा पहाड़ देखा है, अभी एरिया का नाम मालूम नहीं, पूरा कचरे से भरा हुआ है पहाड़ है। ये हर शहरों में, इंडिया के जितने भी भारत के शहर है, सब जगह ऐसे कचरों के पहाड़ बन रहे, गाँव से लेके बड़े बड़े शहरों में कचरों के पहाड़ बन रहे, तो ये प्रगति है। देखो वो कितना खुश है, वो उसको लग रहा है बड़ी प्रगति उसने की है। तो अभी ऐसे अगर स्थिति में जिएंगे तो फिर क्या होगा, वो कोरोना आएगा और दूसरा कौन नहीं आएगा, अभी देख लो। अभी प्रकृति फिर क्या करेगी, बेटा चलो तुमने बहुत बवाल कर दिया है, अभी तुमको हम ठिकाने लगाते हैं, देख लो ये कोरोना वायरस आ गए है कि नहीं, अभी पता नहीं कौन सा वायरस है, ये कोरोना से पहले ही बनाया था पिक्चर, तो आप देख लो। ये कहते चलो इसका भी पापड़ बना दो, इसने इस प्रकृति का पूरा नाश किया, हाँ इसको खत्म कर दो, चलो हो गया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि वृंदावन जो है, प्रभुपा जी कहते हैं कि ये साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए है। हाँ, वृंदावन जो है वो हाई राइज बिल्डिंग में रहने के लिए नहीं है। तो भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान क्या बताते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण के भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अथ चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो आज इसमें ये 2 श्लोकों में जो बताया गया है, प्रभुपाद जी खास करके यही हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भौतिक जगत में हम लोग कितना भी प्रगति करेंगे, लेकिन इस प्रगति से अगर हमें अगर सचमुच अपने आप को अगर बचाना है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें ये शारीरिक स्तर से ऊपर आना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का पहला नियम है। इस धारणा के अनुसार मनुष्य पहले ही अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेनी चाहिए है, तब समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता आदि पर विचार करना चाहिए। लेकिन ये सब अज्ञान के कारण प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जिसको कहते हैं भरम, फिर अर्जुन में आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी अर्जुन का उदाहरण देते हैं। अर्जुन ने भी कृष्ण भगवान से कहा था कि मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन अर्जुन जो है वो भी एक अज्ञान में चला गया था। हाँ, उसके अंदर भी एक ऐसी भावना आई थी, अरे ये सब मर जाएंगे तो फिर राज लेने का क्या फायदा है। हाँ, अर्जुन को भगवान ने अज्ञान में डाल के अर्जुन को भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया था। तो प्रभुपाद जी यहां जो है जो एक श्लोक जो कोट कर रहे माधवाचार्य का, तो उसके अंतर्गत प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि यह जान लेना चाहिए कि उसके चाहे लाखों दोस्त या दुश्मन हो, न तो दोस्त सहायता कर सकता है न ही दुश्मन उसकी कोई उसको जो है क्षति पहुंचा सकता है। तो हम क्या है, ये अहम ब्रह्मास्मि, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जो है भगवान के पार्षद है। मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मा और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शरीर में होने वाले परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसे शारीरिक संबंधों का यथा दोस्त या दुश्मनों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में न तो हम स्वयं और न हमारे शत्रु कभी मर जाते हैं। तो अर्जुन को भी कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय के प्रारंभ में बताया था कि ऐसा समय नहीं था कि ये लोग नहीं थे न हम थे, तो ये लोग भी थे हम भी थे, अब रहेंगे आगे भी रहेंगे। तो आत्मा हमें मालूम होना चाहिए शाश्वत है। तो जैसे भागवतम में उल्लेख आता है, कर्मणा दैवी नेत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते। तो इस इन अध्याय के पहले आप देखते कि हिरण्यकश्यपु ने अपने घर वालों को बताया था कि जैसे एक होटल में यात्री आते हैं अपना भोजन करके अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, तो कहते कि उसी प्रकार हम कुछ जीव एक साथ एक घर परिवार समाज देश में आ जाते हैं और अपने कर्म के अनुसार हमें क्या होगा, अपना समय आने पर इस घर को खाली करना पड़ेगा, यानी इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा और उसके पश्चात एक व्यक्ति को दूसरा शरीर ग्रहण करना होता है। तो प्रभुपाद जी यहां हमें ये बता रहे कि मनुष्य के शरीर के भीतर स्थित आत्मा के विषय में तथा भाव बंधन से आत्मा को छुड़ाने के विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। तो मृत्यु के समय तो एक व्यक्ति भगवान को याद नहीं कर सकता। तो हमारे एक बॉम्बे में, एक बॉम्बे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, सर्जन थे। तो एक बार एक महिला आई थी, सिंधी महिला थी, वो आई थी हांगकांग से। तो डॉक्टर ने उसको जांच किया, उसका बचने का कोई संभव नहीं था, लेकिन ये भक्त थे, उन्होंने सोचा चलो हम इसको भगवान की याद दिलाते हैं। तो उन्होंने उसके कान में जाके कहा कि भगवान हरे कृष्णा बोलो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा बोलो। तो क्योंकि वो सिंधी थी, वो कह रही थी छा 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 का मतलब क्या है। तो डॉक्टर ने सोचा कि इसका भी कुछ कम सुनाई दे रहा होगा, तो उन्होंने खिड़की दरवाजा बंद किया, फिर कान में जाके जोर से चिल्लाए, कहा कि भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा बोलो। फिर भी उस स्त्री के दिमाग में कुछ गया नहीं। तो फिर कुछ समय के पश्चात डॉक्टर ने सोचा चलो अभी तो मैं भी इसको कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन उस स्त्री ने क्या किया, अरे डॉक्टर साहब एक पेन पेपर लेके आओ। तो डॉक्टर चौंक गया, अरे, कहा कि देखो मैं मेरे लड़की का नंबर देते हूं, आप उसे तुरंत यहां बुला लो, उसको कहो अभी मेरी कोई जीने की उम्मीद है नहीं। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग जी रहे, लेकिन 99 रूपा जी लिखते 99% लोग है आज इस दुनिया में वो अज्ञान में जी रहे, उनको मालूम नहीं कि कब उनकी मृत्यु आएगी। तो ये कोई पूर्व निर्धारित नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं मनुष्य के शरीर के भीतर स्थित आत्मा के विषय में तथा भव बंधन से आत्मा को जो है छुड़ाने का जो विषय में अत्यंत हमें गंभीर रहना चाहिए। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई जिज्ञासा प्रश्न है आज के लेक्चर के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, हरे हरे बोल। हाँ, भगवान ने कहा था तस्मा सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्धस्य। तो भगवान कह रहे थे कि आप अपना कार्य करते हुए, युद्ध करते हुए मुझे याद करो, और अपना युद्ध भी करते रहो, मुझे भी याद करते रहो। आप कर सकते हैं, भगवान को याद करते करते अपना कार्य करते करते भी आप भगवान को याद कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
दो प्रश्न है, एक कि जैसे आपने कहा कि वृंदावन में जिस तरह से रहना चाहिए उसकी जीवन शैली बताए, लेकिन उस जीवन शैली का कोई विजन ज्यादा नहीं है लोगों के पास में।
हाँ, वो लोग अज्ञान है, अज्ञान में है। वृंदावन में जितने भी यात्री आते हैं उनको क्या खाना है, क्या करना है, क्या मौज, वो लोग सिर्फ मौज करने के लिए आते हैं, वो लोग तीर्थ यात्रा करने नहीं आते। वृंदावन तीर्थ है, वृंदावन में तीर्थ में जब भी हम जाते हैं तो तीर्थ में कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं, वो आजकल है ही नहीं, वो कोई कर नहीं रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाँ, समझ गया। तो प्रभुपाद जी का एक किताब है हमारे मंदिर में, उसको बनाया है वृंदावन यथा रूप, वृंदावन एज इट इज, वो किताब आपको गिफ्ट शॉप में मिल सकता है। तो उसमें प्रभुपाद जी ने वृंदावन में रहने का तरीका बताया है, वृंदावन में जीवन व्यतीत करने का तरीका बताया है। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा वृंदावन में किस प्रकार जीवन व्यतीत करने का है, करना चाहिए, उसका पूर्ण ज्ञान मिलेगा। हरे
कृष्ण।
क्या सेठ? मुझे क्लिक नहीं हुआ। हाँ नहीं, सेठ जो डूब गया, वो तो सेठ जी तो डूब गया। चलो चलो, नहीं नहीं उसका कुछ मालूम नहीं। चलो, हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।